नारायण 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 नारायण। प्रेमपुरी आश्रम में स्वामी जी का स्वागत है। हम सब स्वामी जी के श्री चरणों की वंदना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। स्वामी जी बहुत ही सरल और बहुत ही सहज है। वो हर एक बात की बहुत गहराई में जाते हैं और हर बात को वो पूरी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। गत वर्ष भी हमने स्वामी जी को श्रीमद भगवद गीता के 8वें अध्याय पर सुना था। अब की बार स्वामी जी 9वें अध्याय पर अपना प्रवचन करेंगे। मैं आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से पुनः स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं। जय श्री कृष्ण।
ध्यानमूलं गुरो मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगेन्द्रमथास्य शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्याद् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। श्री प्रेमपुरी जी महाराज को प्रणाम। परम भागवदीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप श्री 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 स्वामी अखंडानंद जी महाराज को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसके पूर्व की कथा मार्कंडेय पुराण में है। भगवान अनंत शयन में लेटे हुए थे, नाभि में कमल है, उसमें ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक प्रभु नारायण के कान से दो राक्षसों की उत्पत्ति हुई, मधु और कैटभ। दोनों ने देखा कि एक व्यक्ति तो सो रही है, दूसरा बैठा हुआ है। सोने वाले को क्या करना, बैठे वाले को खा लो। जब दोनों मधु और कैटभ ब्रह्मा जी को खाने के लिए आए तो ब्रह्मा जी ने जगदम्बा की स्तुति की। जगदम्बा ने भगवान विष्णु को जगाया और श्री विष्णु और मधु कैटभ के मध्य 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति की, हे मां, माते कृपा करें हम युद्ध को बंद कराएं, शांति प्राप्त हो। जगदम्बा ने मधु और कैटभ की बुद्धि में कोई एक नया तत्व का सर्जन किया, उन्होंने युद्ध बंद किया और श्री विष्णु से कहा, ओहो तुम बड़े ही अच्छे योद्धा हो, आओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, मांगो। भगवान विष्णु ने कहा, तुम दोनों मेरे हाथ से मरो, यही तो मुझे वरदान चाहिए। उन दिनों में कोई पृथ्वी नहीं थी, न सूर्य न चंद्र न ग्रह न नक्षत्र, चारों ओर केवल जल ही जल था। मधु कैटभ ने कहा, जहां जल नहीं है वहां मारो। भगवान नारायण ने अपने ऊरु अपनी जंघाओं के ऊपर उन दोनों का वध किया। इस वस्तु विषय की प्रारंभ में कथा कहने का हेतु क्या है? जब सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, ग्रह नहीं है, नक्षत्र नहीं है, पृथ्वी नहीं है, उस समय में भी आतंक तो था, उस समय में भी क्लेश था, उस समय में भी दैवी गुण और आसुरी गुण, दैवी शक्ति आसुरी शक्ति थी। सृष्टि में विचार करने की दो परंपरा है, एक है सकारात्मक, एक है नकारात्मक। सकारात्मक को हम कहते हैं थिंक पॉजिटिव, द पॉजिटिव ऑफ थिंकिंग। संतों ने कहा है कि थिंक पॉजिटिव रेस्ट विल फॉलो, हमेशा अपने विचार को सकारात्मक रखो, विधेयात्मक रखो, विध्वंस करने की भावना मत रखो। कृष्ण परमात्मा हमारे इस 9वें अध्याय जिसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग, इसके प्रारंभ में ही बहुत सुंदर प्रस्तुति करते हैं। इसे राज विद्या कहा है, राजगुह्य कहा है। ये विद्या असाधारण विद्या नहीं है, ये विद्या स्थूल कर्मों की विद्या नहीं है, ये विद्या ज्योति शक्ति ज्ञान के ऊपर, ज्ञान के ज्ञान, ज्योतियों की ज्योति, चेतना की चेतना और आत्मा के भीतर की आत्मा की ज्ञान की उपलब्धि कराती है और बड़ी गहन विद्या कहा है, किंगली साइंस द किंगली सीक्रेट। भगवान कहते हैं, इदं तूते गुह्यतमं प्रवक्षामि अनसूयवे। बोलिए, ओम श्री भगवान उवाच। बोलिए, इदं तूते गुह्यतमं प्रवक्षामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। इदं तु ते, ते मने तुझको, अनसूयवे, बहुत सुंदर शब्द है अनसूयवे, दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए। अनसूया वे असूया, असूया कहते हैं दोष देखना। एक कथा सब जानते हैं कि गुरु जी ने दुर्योधन से कहा, जाओ एक अच्छे इंसान को लेकर के आओ। घूम घाम क्या है महाराज, जगत में कोई भी ठीक नहीं है, सब टेढ़े मेढ़े हैं। अच्छा भाई युधिष्ठिर आप जाइए, एक अहित करने वाला कोई दुष्ट व्यक्ति ऐसे लेके आओ। महाराज जगत में सब कुछ अच्छा है, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। मेरे निजी जीवन में जो चिंतन है, ध्यान दें, केवल श्रवण नहीं है, श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन। दूध तो दूध होता है, दूध को जमाना पड़ेगा, जमाने के बाद में दही का मंथन करना पड़ेगा, उस मंथन से नवनीत उत्पन्न होगा, उसके ऊपर भी एक प्रक्रिया के बाद में घी दधि मत घृत काढ़ लियो। हम श्रवण करते हैं, श्रवण पर्याप्त नहीं है, श्रवण नींव का एक पत्थर है, किंतु नींव के पत्थर को रखने के बाद में ऊपर चुनाई ना की जाए तो भवन नहीं बन सकता है। अत्यंत आवश्यक बात है कि इन वस्तु विषय को स्पर्श करे अनसूयवे। रात सोने के पहले शांति से अपने साथ बैठना सीखे। हम टीवी के साथ तो बैठ जाते हैं, अपने साथ बैठे, परिवार के साथ बैठते हैं, अपने साथ बैठे, अखबार के साथ बैठे, अपने साथ बैठे, समुद्र किनारे बैठते हैं, अपने मन के साथ बैठे, अपनी आत्मा के साथ बैठे। बहुत मुश्किल कथा है। हम कह सकते हैं कि तुम ठीक नहीं हो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, किंतु मैं कितना ठीक हूं, उसकी पृथक्करण की प्रक्रिया है। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। क्या कहा? इदम तुते गुह्यतम, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम, इट्स एन सुपरलेटिव डिग्री, परम गहन ज्ञान। बंबई, बंबई में ग्रैंड रोड, ग्रैंड रोड के निकट बाबुलनाथ रोड, वहां पर प्रेमपुरी कॉर्नर, तीसरे माले में सत्संग। बंबई एक, ग्रैंड रोड दो, बाबुलनाथ रोड तीन, प्रेमपुरी कॉर्नर चार, तीसरा माला पांच। बंबई में कथा बोलने से नहीं है, प्रेमपुरी कहां है, गहन में गहन, गुह्य तर गुह्य तम। ये परम गहन ज्ञान जो है, प्रवक्षामि, हम तुम्हें कह रहे हैं अर्जुन, अनसूयवे, दोष दृष्टि नहीं है तुम में। ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञानम ज्ञान को विज्ञान सहितम, रहस्य के सहित। साधारण ज्ञान नहीं है, ज्ञान के रहस्य को भी समझा रहे। प्रवक्ष्यामि कहूंगा, कह रहा हूं, कहूंगा, क्योंकि ज्ञात्वा जानकर, इस ज्ञान को जानकर, ये शब्द को थोड़ा सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, जानकर, एक साथ बोलिए, सुनकर नहीं कहा, देखिए जानकर कहा। एक होता है सुनना होता है, एक होता है जानना होता है। सुनने तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, सुनने के बाद भी जानते कितनी चीज को है। ठठोलना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा अमृत की प्राप्ति के लिए, और जहां मंथन हुआ वहां पहले जहर निकलेगा। उस जहर को पचाने की क्षमता रहे तभी हम महादेव बन सकते हैं। राज विद्या राज गुह्य की प्राप्ति जब हम जहर को पचा लें। क्या कहा? मोक्ष से अशुभात, दुख रूप संसार से अशुभ। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा असूया दंभ छल कपट, पता नहीं कितना कूड़ा करकट है, इन तमाम से मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। साधारण अर्थ है। फिर जाएंगे जीवन को देखने की जो दृष्टि है वो एक नकारात्मक भी है, एक सकारात्मक भी है। जो चाहे देखना चाहे देख सकता है। मान लीजिए कि मरुभूमि में यात्रा कर रहे हैं, चारों ओर केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, दूर तक मरुमरीचिका दिखती है, वस्तुतः वह जल नहीं है, जल की भ्रांति वहां है, और वहां इत्तफाक से एक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी में वृद्ध महिला ने दो बड़े बड़े मिट्टी के नान लगा रखी हैं जल की। खड़े हो जा, माई जल है क्या? हाँ बाबा बहुत ठंडा है, जल पीजिए। माई के प्लास में एक गिलास है, ओ तो एल्यूमिनियम का ग्लास है, आजकल तो एल्यूमिनियम दिखने को नहीं है, वो तीन जगह टेढ़ा है, दो जगह में टूटा फूटा है, उसमें वो ऐसे हाथ डाल करके जल देती है, बहुत मीठा जल है, शीतल जल है, मधुर जल है। उस जल को पीना है कि उस तीन जगह टेढ़े ग्लास को देखना है? जल को पीना, ये दृष्टि है। श्री अष्टावक्र मुनि का जब जनक के राज सभा में आगमन हुआ, उसे देखकर लोग हंसे थे, आठ जगह टेढ़ा है, ये क्या ज्ञान की कथा देगा? जनक जिनको अपने गुरु पद पर स्थापित करने वाले, ये क्या व्यक्ति है? वो कहते हैं गन्ना कितना टेढ़ा मेढ़ा हो, उसके भीतर का जो रस होता है ना, मुझे पता नहीं है आप लोगों में से कितने लोग रक्तदान करते रहते हैं। हमारे अहमदाबाद में अभी हम 68 लोग हैं जिन्होंने 100 से अधिक रक्तदान किया है। सारी दुनिया में जितना रक्तदान होता है उसमें अधिक से अधिक अमेरिका करता है। अमेरिकी की जो बस्ती है, अमेरिकी की जो पॉपुलेशन है, वो लोग 7% रक्तदान करते हैं दुनिया के लिए। आपको पता है कि भारत है वो 5% रक्तदान करता है, और भारत में भी सबसे अधिक 3.5% केवल अकेला एक अहमदाबाद करता है। एक बात देखिए, अहमदाबाद गौरव है, ये उसमें भी आपको आश्चर्य होगा कि अहमदाबाद में जो दान देने वाले हैं रक्तदान, उसमें अधिक लोग विकलांग हैं। वो जो रिक्शा चलाते हैं इनके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, किंतु मस्त है वो। जब भी हमारा रक्तदान शिविर होता है तो वहां उपस्थित हो जाते हैं। शताधिक रक्तदान करने वालों में 3 तो विकलांग लोग हैं। अभी 5 दिन के पहले हमारे चीफ जस्टिस दीवान साहब का देहावसान हुआ। जस्टिस दीवान साहब ने भी, उनके परिवार में 6 लोग हैं वो शतायु रक्तदान, ये शतक रक्तदान, 100 से अधिक रक्तदान करने वाले। अपने जीवन को टटोलना है कि मैं अपनी दिशा को कहां से कैसे ढूंढ सकता हूं। ये टेढ़े मेढ़े शरीर हो सकते हैं किंतु मन टेढ़ा मेढ़ा होना उचित नहीं है। शरीर सुंदर हो किंतु मन में जो कलुषता हो तो उचित नहीं है। दोष दृष्टि रहित तुझको, ये दोष दृष्टि है। सबसे पहली आवश्यकता साधु जीवन की है सकारात्मक चिंतन करें। इसलिए कहते हैं जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु, व्याप्त नारायण स्थित, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी तुझी पाय दौड़े, यच्चकिंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते। ये तमाम का कहने का हेतु क्या है कि मैं जहां हाथ रखता हूं वो परमात्मा का ही हाथ है। एक दफे ये दृष्टि हो जाए हमें राजविद्या स्वतः प्राप्त हो जाएगी, किंतु क्लेश बना हुआ है, आतंक बना हुआ है, जीवन में ईर्ष्या बनी हुई है, स्वार्थ बना हुआ है, इसलिए भाई भाई की नहीं पड़ती, पिता पुत्र से नहीं पड़ती है, गुरु चेलों की नहीं पड़ती। संन्यास धारण करके हरिद्वार में रहने वाले महात्मा लोग भी जमीन के लिए, जायदाद के लिए कोर्ट में चले जाते हैं, 12 साल तक मौन रख लूंगा। क्या मतलब मौन रखो ना रखो, लड़ाई तो कर रहे हो कोर्ट में, क्या मतलब क्या है? ये वस्तु क्यों होती है? क्योंकि साधना की कमी है। कृष्ण हमें बता रहे 8 अध्याय के बाद में, ध्यान दे, अक्षर ब्रह्म है जहां अर्जुन ने पहले 7 अध्याय में कृष्ण जो कहना था तमाम कुछ कह चुके हैं, कुछ बाकी नहीं था। फिर 8वें अध्याय का उपोद्घात होते अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं अर्जुन? किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ये कर्म क्या है, ये अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये मां क्या, ये इतने सारे प्रश्न, और हमारे भीतर में इनका संबंध क्या है? एक साथ में प्रश्नों की परंपरा लगा दी है। इतना कुछ कहने के बाद में अब तक जो दोनों के बीच में जो चर्चा रही अर्जुन और कृष्ण के बीच में, वो अर्जुन है वो बुद्धिवादी रहा। अर्जुन बुद्धि से चल रहा था। बुद्धि तू सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह एवच इंद्रियाणि हयानाहु शरीरम रथम एवच। ध्यान दे, ये शरीर का सारथी जो है बुद्धि है। वो बुद्धि जो एक्सीडेंट क्यों होती है, अगर माताल रहे तो हमारे एक दोस्त की कोई पिछले 15 दिन के पहले मौत हो गई। यहां बंबई से वो नवसारी जा रहे थे, बीच में तो बड़ा डिवाइडर है, बंबई से नवसारी जाने वाले जाएंगे, नवसारी से बंबई आने, उन दोनों के बीच में डिवाइडर। किंतु जो सारथी था वो दूसरी ओर से आने वाला एक टैंकर का माताल पिए हुए था, उसने वो डिवाइडर को तोड़ करके जंप करके इनकी गाड़ी के ऊपर में आकर के गिरा। तो गाड़ी तो पापड़ से फूटी है, इंसान का सिर है वो, उसमें नाक का कान का कुछ पता नहीं। क्यों होता है ये? होने की वजह जो सारथी है, बुद्धि है। हमारी बुद्धि वो शुद्ध बुद्धि है क्या? एक लीला साहजी महाराज रहे गांधी धाम में, हमेशा बोलते थे, हे भगवान मुखे शुद्ध बुद्धि दे, हे भगवान मुखे नामदान दे, हे भगवान मुखे निरोगता दे कि पैंजो कर्तव्य चंगी तरह के, हे भगवान मुझे शुद्ध बुद्धि प्रदान करे, तुम्हारी यशोगान करने की क्षमता प्रदान करे, मेरा शरीर स्वस्थ रहे कि मैं अपना हर कार्य अच्छी तरह शुभ प्रकार से करूं, बुद्धि शुद्ध हो। सूत्र के बाद में दृष्टि का है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक है। एक बहुत बड़े विचारक रहे पोल्यानी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पर्सनल नॉलेज। ये पर्सनल नॉलेज होता है, इसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस। अपने आप को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम लोग कहते हैं कि हम स्वाध्याय करते हैं। ये स्वाध्याय का अर्थ एक संत बैठ करके आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये स्वाध्याय नहीं है। स्व अध्याय, स्व माने आत्मा, अध्याय अपने निजी जीवन का पृथक्करण। मैं जैसे देख रहा हूं, कभी कभी चुपचाप कोई नहीं रहे तो उस समय शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़े हो जाना, पूछना मैं ठीक तो हूं, वो जोर से हंसेगा, पता है गोलमाल हो तुम, क्योंकि अपने जीवन की बात उसी को पता है। अपने आप को ठटोलो, रोज अपने साथ में बैठने का प्रयत्न करो, एक डायरी लिखो, कितना बजे उठा, उठने के बाद में मैंने कितना समय है वॉशरूम में, बाथरूम में, शौचालय में बर्बाद किया, कितना जप किया, कितना ध्यान किया, कितना पाठ किया। अभी हम आए तो आदरणीय श्री मधु बाबू जी को कह रहे थे कि पिछले साल रसिया में यहां रहे, इस साल रसिया में साबरमती जेल में रहे। 7 मार्च को होली थी, 7 मार्च को 82 साल के पहले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पहली बार जेल में बंद किया गया था। पूज्य बापूजी महात्मा गांधी जी हैं, वह दांडी कूच की यात्रा करने वाले थे, उनके प्रचार के लिए सरदार हैं, जिस मार्ग पर बापूजी चलेंगे उस मार्ग में गांव गांव में जाकर के प्रचार कर रहे थे। रास नाम के गांव से उनको पकड़ करके लाया गया और साबरमती जेल में उनको बंद कर दिया गया, जून महीने तक रखा था। वहां जो जेल में कैदी लोग हैं उनको हमने कहा सरदार के जीवन को थोड़ा टटोलो। कैदियों से हम कहते रहे, देखो भाई इस केस से, जेल से आप बाहर नहीं जा सकते, किंतु अंदर जाने में तो कोई रोक नहीं है, अंदर जाते हुए तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है, अपने भीतर जाने की कोशिश करो। सरदार जी ने जो डायरी लिखी, उस डायरी में लिखा था 4 बजे उठा, गीता और रामायण का स्वाध्याय किया, प्रतिदिन लिखा है। किंतु एक दिन लिखा है, कल रात मातरखेड़ा से कुछ राजकीय कैदी आए, उनसे देर रात तक चर्चा करते रहे, इसलिए आज 5:30 बजे उठा, गीता रामायण का पाठ किया। प्रातःकाल भोर 4 बजे उठ करके गीता रामायण का पाठ करता है। और एक दिन 4 बजे नहीं उठ पाया, 5:30 बजे उठे, तो उन्होंने लिखा है आज 5:30 बजे। सत्य है, वो लिख सकते थे 4 बजे, कौन उनको रोकने वाला था।
किंतु वो अपने आप को जानते थे, अपने दर्पण को अपने को ठीक से देखते थे। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की नींव के ऊपर उनकी जीवन की अट्टालिका खड़ी थी। उनकी दृष्टि दोष नहीं थी, उनकी दृष्टि सकारात्मक थी। मैंने गीता रामायण का पाठ किया कि नहीं? देर से किया, किंतु किया तो सही। उनके यदि लोगों से कहा कुछ भी कार्य करो किंतु थोड़ा अपने साथ बैठने के लिए कोशिश करो, बहुत जरूरी बात। किसी भी इंसान होता है, जरूरत नहीं है कि कैद में जाने वाला इंसान सच में वास्तविकता में वो कोई गुनेगार हो। कभी पकड़ के भी बंद कर दिए जाते हैं, केस चलते रहे 5 साल 10 साल 15 साल, फिर बताया जाता है कि नहीं नहीं तुम तो कोई गुनाह नहीं किए थे, क्षमा करे जाओ, 15 साल मेरे जीवन के चले गए, उसका क्या कौन वापस दे सकता है। तब तक परिवार बर्बाद हो जाता है दोष दृष्टि में। दोष दृष्टि में जीवन है हतभागी होता है। कृष्ण कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो 8 अध्याय की एक अट्टालिका खड़ी की है, उसके ऊपर में एक सिरमौर लगाया है, 8 अध्याय की एक नींव खड़ी की है। तो केवल ज्ञान की ही थी, अब विज्ञान की प्राप्ति हो रही है। क्यों? दोष दृष्टि नहीं, अब बुद्धि से परे हुए हृदय में आए हो। देखिए हृदय यहां नीचे होता है, वो मुंह थोड़ा और ऊपर है और बुद्धि थोड़ा और ऊपर है। हम बहुत ऊपर रहते हैं, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। निवाह होके चल दे निवियानुरभ मिलता, ऊंचे ऊंचे हवा में मत उड़िए, जमीन पर चलना सीखिए मेरे नारायण। अगर वास्तविकता में हम चाहते उस दिव्यता को भव्यता को प्राप्त करने के लिए हमें इस ठोस जमीन पर चलने की आदत डालनी पड़ेगी, अपने वास्तविक जीवन को जीतना पड़ेगा। हवाई जहाज जो ऊपर चलता है 35,000 फीट ऊपर, तो एक ठोस जमीन के ऊपर में रनवे के ऊपर दौड़ता है, वो रनवे बड़ा ठोस होता है, 1 फीट 1.5 फीट तक सीमेंट नीचे रहेगा उसके ऊपर। एक ठोस जमीन के ऊपर, सॉलिड जमीन के ऊपर उड़ने के बाद में आप 35,000 ने उससे भी ऊपर जा सकते हो, किंतु ऊपर जाने के लिए पहले एक ठोस हो, एक नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। वाइज मैन बिल्ट ए हाउस अपॉन द रॉक, एंड रेन्स केम ट्रेवलिंग डाउन, रेन्स केम डाउन एंड फ्लड्स केम अप, एन हाउस अपॉन द रॉक स्टूड फॉर्म। फुलिश मैन बिल्ट ए हाउस अपॉन द सैंड, एन रेन्स केम ट्रेवलिंग डाउन, रेन्स केम डाउन एंड फ्लड्स केम अप, एन हाउस अपॉन द सैंड फेल डाउन। एक नींव मजबूत हो तो कितनी भी आंधी तूफान में हमारे जीवन की अट्टालिका, अध्यात्म की अट्टालिका, साधना की भूमिका कभी भी विचलित नहीं होगी। 2001 में बहुत बड़ा एक तूफान आया गुजरात में, भूकंप हो गया था, हमारे आश्रम में अष्टलक्ष्मी भवन का निर्माण हो रहा था। नींव डालने के लिए हम खोदते ही चले गए, कहीं मिट्टी ही नहीं आई, रेता ही रेत चला गया। चिदानंद ध्यान मंदिर के नीचे 35 फीट तक चले गए किंतु रेता यात्रा, हमने कहा छोड़ दीजिए रेत के ऊपर ही बनाएंगे, किंतु वहां पर 1 करोड़ मंत्र लिख करके लिख दो, मंत्रों के ऊपर नींव रखो, जिसकी नींव में राम है उसको कोई विचलित नहीं कर सकता है। रेत के ऊपर में 1 करोड़ मंत्र राम के नाम के लिख करके उसके ऊपर में नींव डाली गई। वो जैसे ट्रेडिशनल बोलते हैं कछुआ भी रखो, कुर्म नारायण, नाग नारायण, पंचरत्न, ये तमाम रहे किंतु 1 करोड़ मंत्र रखे गए हमारे गुरु महाराज ने। और जब भूकंप हुआ मकान ऐसे चल रहा था, शटरिंग लगी हुई थी, महाराज एक लकड़ी नहीं हिली, एक तिराड़ नहीं आई मकान में। नींव हमारी पक्की हो, और नींव में क्या हो, नींव में सकारात्मक चिंतन हो, नींव के अंदर एक ठोस विचार हो, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, जो मैं देखता हूं तमाम शुद्ध है, वो ब्रह्म है, वो राम ही है। जागत राम ही, सोवत राम ही, सपने में देखियो राजा राम ही, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। आंखों के अंदर में अगर झेर रहेगा, दुनिया तमाम झेरीली ही दिखेगी नारायण। आंखों में करुणा रहे, कारुण्य प्रेम सद्भाव, दुनिया में भी माधुर्य उत्पन्न हो जाएगा। अपने जीवन के भीतर को टटोलने के लिए कहते हैं, ये कहा कि पर्सनल नॉलेज, इसकी किताब कहा पोल्यानी, पोल्यानी ने लिखा बहुत सुंदर, उनका कहना है कि ज्ञान व्यक्ति से मुक्त नहीं हो सकता। ज्ञान और व्यक्ति दोनों पृथक नहीं है। ज्ञान बाहर से नहीं आता है, ज्ञान आपके भीतर से आता है। क्या कहा, मंथन। घी बाहर से नहीं आया, घी दिखता नहीं है, दूध के अंदर है, किंतु उसके ऊपर एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ज्ञान के लिए एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी, ज्ञान को ठटोलना पड़ेगा। कभी कोई भी कहे कुछ बात, एक अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? आंख से हम कुछ देखते हैं। अब जो आंख से जो देखा वो सत्य है क्या? ये आवश्यक नहीं है। आंख से हमने कुछ देखा तो आजकल तो इस बात को समझाना बहुत सरल है। शाम ढलते ढलते चौपाटी में चले जाओ, हाँ, ऐसे ऐसे कमर मटका के चलने वाले किसी के पीछे चले जाना, लंबे सुंदर बाल हैं, ऊंचे से जूते पहने हैं, टाइट जीन पहनी है, सुंदर सा एक ऊपर का वस्त्र पहना है, मटकते 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 देखो, आप समझेंगे कोई सुंदरी कन्या है, आगे जाके देखो तो दाढ़ी मूछ भी होगा। उनके चलने से, वेशभूषा से, बाहर के कभी कभी किसी की आवाज से भी, आवाज से भी आप समझेंगे कोई सुंदरी स्त्री है, वो पुरुष होता है, उसको ऐसे बोलने का अभ्यास हो जाता है। जो आंखें देखती हैं वह सत्य है, ऐसा आवश्यक नहीं है। केवल कान सुनते हैं वह आवश्यक नहीं है। स्पर्श किया तो वो ऐसा है, वह आवश्यक नहीं है। इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों तन्मात्राएं हमें भ्रमित करने के लिए सक्षम है। उनके साथ में मन और बुद्धि को जोड़ना पड़ेगा, किंतु मन और बुद्धि के साथ में हृदय का भी संबंध होना पड़ेगा। आत्मा त्वम गिरिजा मति, आत्मा यहां है, मति ऊपर है। अगर मति व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र चलती है तो मति का रास हो गया दक्ष के यज्ञ में जाकर के, क्यों? उन्होंने आत्मा की बात नहीं सुनी। आत्मा और मति दोनों का ऐक्य होगा तभी जाकर के हमारी गति शुद्ध होगी, हमारा व्यवहार शुद्ध होगा, हमारी वाणी शुद्ध होगी। तब दंभ से हम पृथक होंगे, छल से हम पृथक होंगे, बाह्य दर्शन से पृथक अंतर चेतना में जागृति होगी। क्योंकि हमारी जो देखने की क्षमता है, व्याख्या है, हमारा मनोभाव है, मनस्थिति है, हम कितने ही आनंदित हों किंतु हृदय में कहीं पर भी क्लेश हो, दुख हो, तो हम अपने आनंद की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। क्यों? हमारे एमने खाटू पड़ी गये, बुलाया है इसलिए तो हम आए हैं, उसका हमें आनंद है, किंतु बहुत दिन से, कल एक महात्मा आए शाम को, वो नीचे डॉक्टर साहब के पास कोई दवाई लेने के लिए आए थे, डॉक्टर साहब चले गए तो पूछा कौन कौन महात्मा है, तो हमारे पास में आकर बैठे। फिर हमने बोले कहां विराजते हो, सब 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 बात करते करते हमने कहा कि फला फला, नहीं स्वामी जी हमारी उनकी पटती नहीं है। हमने कहा क्यों पटती नहीं है, बड़े अच्छे महात्मा है। नहीं स्वामी जी, अच्छे महात्मा तो है मगर हम गए तो कभी वो सम्मान नहीं देते हैं। तुम सम्मान पूछते क्यों, जाकर दंडवत प्रणाम करो, चरण स्पर्श करो, बैठो, महाराज जी कोई सेवा है तो आज्ञा कीजिए। और सम्मान, सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, सम्मान के लिए योग्यता उत्पन्न करनी पड़ेगी। मैं अगर अपना अहम लेके चलता हूं तो कभी भी, जैसे कि रेता होता है वो पानी में घुल मिल नहीं सकता है, चीनी मिल जाएगी, नमक मिल जाएगा, क्योंकि वो घुलने के लिए सक्षम है। रेता क्यों कड़क है, अकड़ है, ये दांत है ना, दांत बाद में आते हैं, जीभ पहले आती है। जब हम पैदा हुए तो ये जीभ को लेके आए, मरने के समय जीभ साथ लेके आते हैं, किंतु दांत बाद में आते हैं पहले जाते हैं, क्यों? कड़क है, अकड़ है।
गर्व कियो सोई नर हार्यो सिया राम जी से, अकड़ मत रहो, निवाह होके चल दे, निवियानुरभ मिलता, विनम्र बन के रहो, जितना हो के विनम्र बन के। नानक दास सदा कुर्बानी, रहे दास है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि व्याख्या रहित देखना असंभव है। जब हम कुछ देखते हैं, दोष दृष्टि नहीं है, कुछ भी देखते हैं, तो देखने के साथ में हम देखते हैं काला है, गोरा है, ऊंचा है, नीचा है। ओ तो ये कल हमारी परम भागवत या पुण्य श्लोक मातृ स्वरूप पूर्ण प्रज्ञानंद माता जी का जन्मोत्सव मनाया गया महिला मंडल के द्वारा। तो कुछ माताएं बैठ करके गाना रही थी, मैया सांवरिया से मेरी शादी करा दे। क्या गा रही थी? मैया सांवरिया से मेरी शादी करा दे। ऐसी शादी क्या कराए जिसका जीना भी है मरना भी है, तो दोष हो गया ना। सांवरिया से शादी करा क्योंकि उसका जीना भी नहीं है, उसका मरना भी नहीं है। जिसका जीना है, जिसका मरना है, उससे शादी नहीं कराना। गुजराती में बोलते हैं, काड़ो ते वरन जोजोरे दादा, काड़ो तो कुटुंब लजा वर्ष है, धोड़ो ते वरन जोजोरे दादा, धोड़ो तो आप वखाणी हो, ऊंचो तो वरन जोजोरे दादा, ऊंचो तो उम्र भांगश है, नीचो तो वरन जोजोरे दादा, नीचो तो नीचू भांगश है, शरीरे पातळियो ने मुखड़े सामळियो, ये तो मारी सैयरे वखाणियो। एक दूल्हा देखने के लिए लंबा नहीं हो, नाटा नहीं हो, काला नहीं हो, गोरा नहीं हो, मोटा, एक दृष्टि कोई भी वस्तु विषय को देखने के साथ में उसके तमाम रूप गुण तमाम आ जाएंगे। बिना रूप गुण के दृष्टि हो ही नहीं सकती है। किंतु तमाम अवस्था में ये कैसे संभव हो सकता है? महर्षि पतंजलि ने कहा हो सकता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान करो, ईश्वर में शरणागति स्वीकार करो, सर्वत्र ईश्वर का ही दर्शन करने की भावना रखो। ये दोष दृष्टि से कैसे रहित होना है? महर्षि पतंजलि ने कहा तस्य वाचक प्रणव, ईश्वर में श्रद्धा विशेष ना हो किसी स्वरूप में तो प्रणव ओमकार का ध्यान करो। प्रणव ओमकार के ध्यान में रुचि नहीं है तो प्राणायाम है ना, किल्विशाम, प्राणायाम करो। उससे मन की जो कलुषता है, काशाएं है, रोग है, मन की मलिनता है, वो नाश होगा। और फिर भी नहीं है तो बोले संतों के जीवन को पढ़ो। संतों के जीवन को पढ़े से सद्गुणों का चिंतन होगा। संतों के सद्गुणों का चिंतन करो। फिर नहीं हुआ तो बोलते हैं ऐसा नहीं है तो आपकी जिसमें रुचि हो उसका चिंतन करो। कैसे हो सकता है? ये क्या है भाई? ये क्या है? एक वस्त्र है। ये वस्त्र है तो आप उसको वस्त्र देखते हैं तो ये किससे बना है? तो ये तो बना है धागों से बना है। तो ये वस्त्र है कि धागे हैं? धागों का समूह है, इसे बोलते हो। फिर ये धागे तो कैसे बने हैं? और कपास से बने हैं। और कपास कहां से आया? और पेड़ से है। छोटा सा पौध है द्रांगद्रा में, सुरेंद्रनगर में होता है बहुत। तो वो पेड़ कहां है? तो पृथ्वी से है। तो पृथ्वी क्या है बताओ? बोले गैस है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गैस का समूह है, बहुत सारे गैस हैं, उसका समूह पृथ्वी। तो ये गैस है क्या? आप तो बताओ भाई। तो गैस तो नहीं है, फिर क्या है? सूर्य क्या है? पृथ्वी सूर्य का भाग है, तो ये सूर्य है क्या? कुछ भी हमने देखा तो देखने के साथ में एक विचार चलेगा, विचार की गहराई में जाना। इतनी गहराई में जाने के बाद में एक नई चेतना जागृत होती कि हर वस्तु विषय के पीछे एक अनुसंधान है, एक संबंध है। और संबंध कहां तक है? अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन बहुत सारी कविताएं लिखी है, उसमें एक कविता लिखी है जड़ की मुस्कान। भाव ऐसा है, ये पेड़ के ऊपर पक्षी आके बैठे तो पक्षियों ने कहा देखिए हमारे बैठने से वृक्ष की शोभा है।
फूल की कलियां हंस पड़े, तुम तो आए उड़ गए, हमसे शोभा है, हम सुगंध डालते हैं। पत्तियों ने कहा चुप रहो, तुम तो मौसम में खेलते हो, बारह महीना तो हम हरी भरी रहती है, हमसे शोभा है। डालियां हंसी, न हम होती वो पत्ते, तुम पनपते कहां। तना बोलता है तुम लोग बिल्कुल निर्लज हो, सबका बोझ तो मैं सहन कर रहा हूं, हा? मेरे लिए कोई बात नहीं करते हो। जड़ ने सोचा अच्छा है मैं कुछ नहीं बोलूं, अगर मैं बाहर आके बोलूंगी सब मामला बेड़ा गर्ग हो जाएगा। नारायण वो जड़ है जिसके पीछे तना है, डालियां हैं, पत्ते हैं, कलियां हैं, पुष्प है, पक्षी है। वो जड़ क्या है? हमारी आत्मा है। इसलिए जो छठा अध्याय बोल रहे थे आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अपिचिंतयेत, जब हमारे मन को अपनी बुद्धि को आत्मा में लगाएंगे तब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि आत्मा निर्विकार है, आत्मा में कोई विकार नहीं है। आत्मा नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो जब मन है बुद्धि आत्मा से रहते हैं तो हृदय यहां है, बुद्धि ऊपर है, बोलते यहां से है, हमने कभी भी हमने ऊपर से नीचे आने की, जड़ के भीतर आने के लिए कोशिश नहीं की। हे अर्जुन, ये परम गहन ज्ञान जो हम तुम्हें दे रहे हैं, क्योंकि तुम आनस हुए, तुम निष्कपट, तुम्हारी दृष्टि शुद्ध है। मन में रहने से विकार हो सकता है, बुद्धि में रहने से विकार पूरा संभव है, क्योंकि बुद्धि चलित है, चंचल है। आत्मा में रहे तो नहीं होगा। आत्मा क्या है? वस्तुतः सत्व है, शुद्ध सत्व, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। ये जो शुद्ध है, क्या कहा कि कृष्ण सूत्र के प्रारंभ में अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं कि द्रोष दृष्टि रहित भक्त के लिए, देखिए बहुत जरूरी बात है, भक्त के लिए कहा है, दोष दृष्टि रहित व्यक्ति के नहीं कहा, भक्त का है, दोष दृष्टि रहित इंसान के लिए भी नहीं कहा, भक्त का है। ये भक्त शब्द बड़ा सुंदर है, बोलिए भक्त, अब बोलिए विभक्त, जो दो शब्द है, भक्त माने जोड़ना होता है, विभक्त माने तोड़ना होता है। जब हमारी बुद्धि है वो जोड़ने के लिए, हमारी संस्कृति ही अलग है। कल माता जी के लिए केक रखा गया, मुझे माता जी के स्वामी जी काटिए, हमने कहा हम तो योग पढ़ाने वाले हैं, योग का मतलब जोड़ना होता है, काटना नहीं होता है, काटने का काम हमारा नहीं होता है। हमारी संस्कृति दीप को प्रज्वलित करने के लिए करके फूक मार के बुझाने की संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति जोड़ने की है। आत्म संस्थम मन कृत्वा, मन को आत्मा में जोड़ना, व्यक्ति को समष्टि से जोड़ना। भक्त है वो अपनी व्यक्तिगत चेतना को समष्टिगत चेतना में जोड़ता है। मांगने के लिए कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं मांगना चाहता है भगवान, वो चाहता है तेरा कल्याण। वास्तविक भक्त कौन है? वो तिलक लगाने वाला, तीन लाइन ऐसे लगाया हमारे जैसे ना, माला डालने वाला नहीं, वो नहीं है। शिखा सूत्र रखता है ना, ना वो भक्त नहीं है। गंगा जी में पांच बार नहा लेता है, आठ समा में दर्शन कर लेता है, वो सब भक्त नहीं है। वो सब प्रक्रियाएं हैं, सब संसार में रहते हैं, संसार के साथ में सब ऐसा करने के लिए रुचित। भक्त है परमात्मा के प्रति एकमात्र चिंतन, ईश्वर के कल्याण की कामना। एक सेठ रहे, उनके यहां एक प्रातःकाल में एक इंसान बाहर खड़ा था। सेठ ने जब दरवाजा खोला, देखा, भाई साहब क्या बात है? मैं बहुत दुखी हूं। दुखी हूं क्या बात है? चार पांच दिन हो गए अन्न नहीं प्राप्त हुआ, घर में माता पिता है, वृद्ध है, पत्नी है, तीन बच्चे हैं, काम भी नहीं मिल रहा है, भीख भी नहीं मिल रही। किसी ने कहा बहुत उदार है, इसलिए मैं आया हूं महाराज। अच्छा क्या चाहिए? बड़ा हिम्मत से बोला 10,000 रुपए दे दो। 10,000 क्या करेगा महाराज जी, एक महीने भर खाने के लिए सबका हो जाएगा। अरे 10,000 क्यों ले रहे, चल 5,000 ले जा, चल 5,000 ले जा, 15 दिन के लिए हो जाएगा, तब तक काम ढूंढ लेना, कुछ काम कर लेना, जा दे दिया। दोपहर होते होते एक और आ गया, पहला भी भक्त है दूसरा भी भक्त, कैसे आना हुआ? महाराज बहुत मुश्किल में हूं, क्या चाहता है? चाहता यही हूं कहीं काम मिल जाए, कुछ काम कर लूं, कोई सहारा मिल जाए। अच्छा 10,000 रुपया ले जा, एक रेडी ले ले, स्कूल के सामने खड़े हो जाना, चॉकलेट चॉकलेट सब बिक्री करना, चिंगम इत्यादि बिक्री करना, बच्चे खरीद कर लेंगे। महाराज धन्यवाद। शाम ढलते ढलते एक और भक्त है, खड़ा था चुपचाप। महाराज कैसे आना हुआ? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो खड़े हो कुछ मतलब? हमने आपके बारे में बहुत सुना, मैं दर्शन करने आया था, देख रहा हूं आप कितने उदार है, सुना उससे कहीं विशेष? अंदर आ जाओ। नहीं नहीं, अंदर नहीं आना है, कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। कहां रहते हो? कहीं भी। सोते कहां? कहीं भी। फिर अंदर आओ ना। नहीं प्रभु मेरे को जाने दो। खींच के अंदर लाया, बाथरूम में नहा लो, कपड़े बदली करो, खाना खाओ। नहीं प्रभु नहीं। अरे खाओ भाई, अपने साथ बैठा के, कहीं भी तो सोना है ना, इसमें सो जा, संत निवास वन सो जा। सो जाओ, आपने मच्छरदानी लगा दिया, एयर कंडीशन चला दिया, ऑल आउट लगा दिया। रात में 3-4 दफे शेठ आकर के देखा, सो तो रहा है कि नहीं, उसया नहीं था, बैठा था। सवेरे शेठ ने पूछा, अरे भाई तुम रात सोए नहीं? सारा जीवन तो सोया हूं, एक मौका मिला है जागने का, और कब तक सोऊंगा? क्या कर रहे थे? यही बंदगी कर रहा था कि ईश्वर आपका कल्याण करे, आप इतने उदार चरित हैं, आप इतने कृपा निधान हैं, आपका मंगल हो, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो। श्री वर्चस्व आयुष्य आरोग्य धन धान्य पुत्र पौत्र बहुविध मंगल हो, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा था। अब मुझको आज्ञा दे, बैठो। नहीं मुझको आज्ञा दे, बैठो यार, आपको बहुत कुछ काम। नहीं नहीं तुम यहां रहो। आलिंगन करके उसको अपने पास रख लिया। ध्रुव ने आप यूं अभी छोड़ राज, पोतानो करी न। हम मांगते हैं इसलिए चले जाते हैं, सबसे बुरो है मांगनो, नहीं मांगना कभी किसी से, मांगने वाले का हाथ नीचे होता है। दृष्टि में शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विचार, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध ब्रह्म, कल्याण की कामना, इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस 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 एब्सोल्यूट, हर हाल में अलमस्त सचिदानंद हूं, कैवल्य केवल कूटस्थ आनंद हूं। उस पर श्रद्धा नहीं छोड़ना, विश्वास है उसको नहीं छोड़ना। अभी हम आए तो मधुबाबू जी बोल रहे थे, हमको खाटू श्याम जी की याद आ गई। मधुबाबू जी आदरणीय श्री मदनलाल दालमिया जी महाराज, उनकी बड़ी इच्छा रही, स्वामी जी हमारी इच्छा है अब हमारे साथ में पिलानी चलिए, बेच जाएंगे। ठीक बात है, जाएंगे चलिए, उदार हैं। बोले आप अहमदाबाद से बंबई आ जाओ, बंबई से चल पड़ेंगे। अरे ऐसा थोड़ा उल्टा होता है, जयपुर जाना है, मैं अहमदाबाद से जयपुर मिलूंगा आपको। हम लोग गए वहां से, सालासर जी गए, वहां से बिट्स गए, रास्ते में झुंझुनू भी गए, मातेश्वरी का दर्शन किया। वापसी में जब खाटू श्याम में आए तो किसी ने कह रहा था लोग आएंगे तो थोड़ा देखभाल करना, पूर्णिमा आने वाली थी, 2 दिन के बाद में इतनी भीड़ लोगों ने कहा, 3-3 दिन से लोग खड़े हैं धूप में, लोग दंडवत करके करके आ रहे थे, हाथ पांव छील गया था इतनी कड़ी धूप में। पीछे के दरवाजे से हमको लेकर के जाएंगे, वहां एक लड़का खड़ा हुआ था, अपने ढंग का ही था वो, कैसी भी व्यवहार कर रहा था। मुझे अपने लिए चिंता नहीं, मुझे तो बाबूजी के लिए चिंता थी, मदनलाल जी को इतनी धूप में खड़ा करना। वो कार में से उतर के आते, फिर बोले आ जा, अरे निकाल देगा फिर आ जाओ। जब 2-3 दफे ऐसे बोल दिया, मैंने कहा ठीक है भाई, मुझको क्षमा करना, खाटू श्याम जी को बोल दीजिए कि हम आए थे और उसको पता भी है। हाँ काफी हो गया, खाटू श्याम जी को यहां से दंडवत नमस्कार, चलो बाबू चलो, काफी हो गया, वी कांट, मुझे आपकी ये अवस्था नहीं देखने पाती। उस समय एक अंदर से एक आदमी दौड़ रहा है, महाराज जी आइए आइए। और वो ऐसे लेकर के गया, खाटू श्याम जी के ठीक सामने बैठा दिया, उनके चरणों में बैठा दिया, उनका वस्त्र उनको दिया, उनके मोर पंख का एक सुंदर पंखा दिया, ढेर सारे फूल मालाएं प्रसाद दे दिया। मैंने कहा वो गाली देने से सुनता है, खाटू श्याम भी थोड़ा गाली देने से टेढ़ी उंगली से ये निकलता है, और वो बहरा नहीं है, वो बहरा नहीं है, वो ईश्वर सुनता है। प्रतिपल हमारी जागृति हो कि हमारी बुद्धि का अनुसंधान आत्मा से हो, हमारी बुद्धि का अनुसंधान। अर्जुन ने अपनी शरणागति कृष्ण से स्वीकार की है, और कृष्ण से स्वीकार करने पर ही कृष्ण उसको विभक्त से भक्त कर रहे हैं। अब तक 8 अध्याय तक जो किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम बोल रहा था, बुद्धि से बात कर रहा था, अब वो भक्ति से बात कर रहा है। जब भक्ति से बात करते हो, भक्ति का अर्थ है सरलता है, भक्ति का अर्थ है विनम्रता है, भक्ति का अर्थ है निष्कपट है, भक्ति का अर्थ निष्पाप है। यहां 9वें अध्याय में भगवान प्रारंभ करते हैं, इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। 9वें अध्याय में कहते हैं कि यह जो परम गहन ज्ञान है वो हम तुम्हें कह रहे हैं, कहेंगे, क्योंकि तुम निष्पाप हो। 15वें अध्याय की पूर्णाहुति करते हुए पुनः भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। ये परम गहन ज्ञान हमने तुम्हें बताया, क्यों? क्योंकि तुम अनघ, तुम निष्पाप हो। ज्ञान विज्ञान सहितम कहा है, तो हमसे कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? ज्ञान की, विज्ञान की प्राप्ति के लिए 2 कंडीशन है हमारे। क्या कंडीशन है? कि हम निष्कपट हो, हम निष्पाप हो। निष्कपट निष्पाप छल नहीं। श्री रामचंद्र जी महाराज भी कहते हैं, मोहे छल छिद्र ना भावा। जो छल करने वाला है, छिद्र करने वाला, वो मुझे पसंद नहीं है। दोष दृष्टि से जगत को जो देखा जाए तो नास्तिक के दर्शन का जन्म होता है। भक्त जगत को भक्ति से देखता है। नास्तिक जगत अलग है, वो विध्वंस का है। ए जीसस ने भी बाइबल में बार बार कहा है, जिनके पास आंखें हो देखें, जिनके पास कान हो वो सुने। अब मैं जो ज्ञान दे रहा हूं वो आंख वाले देख करके, कान वाले सुन करके, तो क्या उनके सामने जो खड़े थे वो बिना आंख वाले अंधे थे क्या? वो बिना कान वाले बहरे थे क्या? किंतु हमारी आंख होते हुए हम देखते नहीं, कान होते हुए हम सुनते नहीं है, बहरे हैं, क्योंकि हम जहां खड़े हैं वहां पर शरीर खड़ा रहता है, मन नहीं रहता है, हृदय नहीं रहता है, बुद्धि कहीं भ्रमण करती है 7वें आसमान में। हमारी अवस्था कैसी है? आसमान में एक चील रहती है ना, उस चील के माफिक है। चील कितना ऊपर उड़ती है? उतना ऊपर कोई पंछी नहीं उड़ता, इतना ऊपर। पर चील देखती क्या है? तो जमीन के ऊपर में कोई मरा हुआ चूहा मुर्दा कहां पड़ा है वो देखती है। हम अपनी अध्यात्म में, अपनी साधना में, अपने सत्संग में हम नियम से आते रहे, किंतु तमाम को अगर हमने दिल से लगा करके, दिल जिसको बोलते हैं हृदय, हृदय को समर्पित करते हुए, कि हृदय को निचोड़ करके हमने दे दिया, वो पूरी कामना, पूरा हृदय, पूरी भावना, संपूर्ण तत्व जब तक नहीं कर दिया है। कृष्ण कहते हैं, अब मैं गोपनीय बात कहूंगा। गोपनीय बात है, कल प्रातः काल पुनः 7:30 बजे कहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।